بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت نامہ, میں ہوں توقیر عباس. ناظرین, پاکستان میں جاری شیعہ نسل کشی جاری ہے اور اسی حوالے سے احتجاجی مظاہرے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہوگا. سانحہ کوہستان کے بعد ایک اور واقعہ اسی طرح کا, اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ چلاس کے مقام پر پیش آیا, جس میں مسافروں کو بسوں سے اتار کر ان کی شناخت کی گئی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا. اس حوالے سے بہت سارے مظاہرے پاکستان میں بھی ہوئے. ایک بہت اہم احتجاجی دھرنا جو اس وقت جاری ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے باہر, ایم ڈبلیو ایم کے زیر اہتمام یہ احتجاجی دھرنا ہو رہا ہے, کئی روز سے یہ جاری ہے, اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے. سانحہ چلاس میں جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے, اس پر میڈیا کی کوریج, اس پہ بات کریں گے. گلگت میں جو کرفیو نافذ ہوا ہے اور اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں, وہاں پہ موبائل سروس وہ بالکل نہیں ہے, فلائٹس منقطع ہیں, زمینی راستہ وہاں پہ بند کیا ہوا ہے, مین اسٹریم میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہے پورے اس ایونٹ کو, جو شیعہ مسلمان جو جتنے بھی مظاہرے کر رہے ہیں پورے ملک میں یا پوری دنیا میں, پاکستانی مین اسٹریم میڈیا نے اس واقعے کو اس طرح نہیں لیا جس طرح دوسرے جتنی بھی کمیونٹیز کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو لیا جاتا ہے. اس بارے میں ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہوں گے علامہ امین شہیدی, آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت مسلمین کے, ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو احتجاجی دھرنا جو پارلیمنٹ کے باہر ہو رہا ہے وہ اس کے فضا کیا ہے اور ماحول کیسا ہے اس بارے میں, اور جو چلاس کے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ 23 کے قریب مومنین کو شہید کیا گیا, بہت سارے زخمی بھی ہوئے اور تقریباً 200 افراد کہا جا رہا ہے کہ مسنگ ہیں. مسد کا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ 50 سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں. یہ سارے ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. علامہ صاحب, پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو کوہستان کی طرح کا ایک اور واقعہ چلاس میں پیش آیا, اس بارے میں کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے لوگ زخمی ہوئے, کتنے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں, آپ کے بارے میں, آپ اس کے بارے میں اصل بتائیں کہ جو آپ کے پاس رپورٹس ہیں آپ اس واقعے پر کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہدایت ٹی وی کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ اتنے حساس اور اہم موضوع پر آج آپ پروگرام کر رہے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو مزید توفیق اور ترقی عطا فرمائے, اور یہ بہرحال خدمت ہے کہ آپ مظلوموں کی آواز بن کے پوری دنیا میں مظلوم کی مظلومیت سے پردہ اٹھا کے ظالم کا چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں. یہ جو سانحہ رونما ہوا ہے یہ اسی سانحہ, یہ کوہستان کا تسلسل ہے, اس سے جدا نہیں ہے. سانحہ کوہستان میں 16 افراد شہید ہو چکے تھے, اور جو گلگت بلتستان میں رہنے والے مسلمان تھے انہوں نے مل کے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. تو حکومت نے اور خصوصاً رحمان ملک نے بہرحال یقین دہانی کروائی اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا. تو اس کے بعد پھر جو ہڑتالیں تھیں, جو ایجیٹیشنز تھے, جو مظاہرے تھے وہ ختم کر دیے گئے. لیکن جب ایک نامزد مجرم کو انہوں نے گرفتار کیا تو گرفتاری کے بعد پھر کچھ شدت پسندوں کی طرف سے مظاہرے ہوئے, اور اس مظاہرے پر پھر فورسز کی فائرنگ ہوئی, اور اس فائرنگ اور مظاہرے کے باہمی اس لڑائی میں کوئی 4-5 افراد کام آ گئے. اس کے بعد ایک ایسی فضا گلگت میں چھا گئی جس پر حکومت نے فوری طور پر وہاں پر کرفیو کا اعلان کر دیا. تو اس کے نتیجے میں جو لوگ پنڈی سے, اسلام آباد سے یا ملک کے دیگر حصوں سے گلگت کی طرف جا رہے تھے تو وہ उनको रोक दिया गया चिलास से आगे गुनक फार्म के नाम से एक जगह है, उस मकाम पर रोक दिया गया और उसके बाद उन्हें फिर फिनूके सुपुर्द कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 8 बसें जलाई गईं और अब तक जो शहादतों की मुसद्दका इत्तला'आत गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोगों की तरफ से चूंकि सामने नहीं आई, तो हमने अपने रिसोर्सेज से जब पता किया तो जो गवर्नमेंट के अपने एहलकार थे जो ऑफिशियली अपना नाम जाहिर नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने अब तक बात बताई है कि 23 अफराद की मैयतें और लाशें उनके पास हैं। उसके अलावा 62 से 64 अफराद की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने दी है और कहा है कि हमारे पास लिस्ट जो है उस लिस्ट के मुताबिक 62 से 64 अफराद मिसिंग हैं। लेकिन अब इस इन दोनों रिपोर्ट्स को जब हम ऐनी शाहिदीन की गवाहियों की रोशनी में लेते हैं तो लगता यह है कि ऐनी शाहिदीन ने कहा है कि हमने अपनी आंखों से दर्जनों लोगों को कत्ल होते देखा है और शहीद होने वालों को दरियाए गिलगित में फेंक दिया गया है और कुछ बसों को भी दरिया बुर्द कर दिया गया है। इस वहशत और बर्बरियत की जो सूरत हाल वहां पर नजर आई है उसमें सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों को खुली छुट्टी दी गई इन बेगुनाह मुसलमानों और मुसलमानों के कत्लेआम की, उन्होंने आके बिल्कुल वही तारीख दोहराई जो करबला में दोहराई गई थी। इन बेगुनाह मुहिब्बान अहलुल बैत के बदन को उन्होंने काटा, ज़िबह किया और यहां तक जुल्म किया कि बाज़ लोगों के सरों को पत्थर से कुचल के शहीद कर दिया गया और कुछ लोगों की आंखों को खंजरों के जरिए से, चाकू के जरिए से बाहर निकाला गया। इस बर्बरियत और जुल्म के बाद फिर बाज़ मैयतों के ऊपर तेजाब डालकर उन्हें जला दिया गया। इस तरह के मजालिम इस दफा इस सरजमीन में रोनुमा हुए हैं। अब इन मजालिम के बाद जाहिर है जब इन मजालिम की खबर मुख्तलिफ इलाकों में फैलेगी तो लोगों के अंदर यकीनी तौर पर उसका रिएक्शन पैदा होगा, यकीनी तौर पर वो जज्बाती होंगे, यकीनी तौर पर वो सड़कों में आएंगे, यकीनी तौर पर हुकूमत के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ वो अपनी मजलूमियत की सदा बुलंद करेंगे। लिहाजा गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि इन मजलूम लोगों के जख्मी दिलों के ऊपर मरहम रखती, गवर्नमेंट ने यह काम किया कि गिलगित में कर्फ्यू लगा दिया, तमाम तर मोबाइल सर्विसेज पर पाबंदी लगा दी और उनकी उनको ऑफलाइन कर दिया और इसी तरह से कोशिश ये की कि गिलगित से कोई भी खबर बाहर न आए। अब आज 7वां दिन है, गिलगित में कर्फ्यू है और उस कर्फ्यू की वजह से भी इंसानी जिंदगियां इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार है और वहां पर लाखों लोग इस वक्त बिल्कुल महबूस हो चुके हैं, वहां से निकल नहीं सकते। वापस कोई शख्स अगर जाना चाहे तो जा नहीं सकता। अलमिया यह है कि जिस इलाके में इन मजलूम लोगों का कत्लेआम किया गया वहां पर आप अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी एक सिंगल मुजरिम को अब तक नहीं पकड़ा जा सका, किसी एक जगह कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया गया कि अहले पाकिस्तान को, अहले आलम को, दुनिया वालों को ये बताया जाता कि हमने जुल्म करने वालों को रोका है। अब हद यह है कि अब तक के इन मजालिम के बाद फिर हुकूमत की ख्वाहिश ये भी रही कि लोग उफ भी ना करें, लोग आवाज भी ना उठाएं। ऐसी सूरत हाल में मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने अपनी शरई और दीनी जिम्मेदारी को निभाया और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की काल दी और ये काल सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया में ये काल गई। नतीजा ये हुआ कि जुम्मे के दिन जब मुजाहरे हो रहे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर तो इस्लामाबाद में जो मुजाहरा हुआ वो मुजाहरा डी चौक परेड ग्राउंड पार्लियामेंट के सामने पहुंचा और वहीं पर पहुंचने के बाद मुजाहरे ने धरने की शक्ल इख्तियार कर ली और जुम्मे से लेकर अब तक धरने के वो शुरका वहां पर इस्तकामत के साथ, सरबुलंदी के साथ अपने मुतालबात के लिए खड़े हैं और एक ऐसा वलवला उनके अंदर है, एक ऐसी नूरानियत और हौसले की कैफियत उनके अंदर है कि सुबह से शाम तक, शाम से रात तक और रात से सुबह तक वहां पर लब्बैक या हुसैन के नारे गूंजते हैं।
ठीक, अच्छा, धरने धरने के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, एक मुकम्मल आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ज़िमनी तौर पर ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा है कि जो कर्फ्यू नाफिज किया गया है वो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया है। आपकी तरफ से हुकूमत को एक 7 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए गिलगित में, वो हमसे थोड़ा सा शेयर करें कि वो 7 निकात क्या थे जो आपने पेश किए हुकूमत को।
देखिए, जहां तक गिलगित में अमन अमान कायम रखने के लिए कर्फ्यू नाफिज करने की बात है, वहां पर अमन अमान के लिए कर्फ्यू नाफिज नहीं किया गया, बल्कि उनके रद्द अमल से बचने के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया। अगर अमन अमान की बात होती तो शिराज में कर्फ्यू नाफिज हो जाना चाहिए था, कोहिस्तान में हो जाना चाहिए था, उन इलाकों में हो जाना चाहिए था जहां पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम की जा रही हैं। गिलगित में लाशें तक नहीं पहुंचाई गई, लोगों को मुस्तरिब और मुस्तर रखा गया, परेशान हाल रखा गया, और उनको इत्तला'आत तक नहीं पहुंचाई गई कि किसका कौन सा अजीज जाने शहादत नोश कर चुका है। अब एक ऐसी कैफियत में फिर पाकिस्तान के अंदर जब बेचैनी बढ़ी तो हमने ये धरने का ऐलान किया और मुजाहिरों का ऐलान किया। हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि कर्फ्यू हटाया जाए फौरी तौर पर, और ये जो वहां पर लोगों पर इस वक्त मजालिम ढाए जा रहे हैं उस जुर्म का सिलसिला रोका जाए, सड़कों को महफूज बनाया जाए, और खसूसी तौर पर उन इलाकों में जहां पर दहशतगर्दों के अड्डे भी हैं और उनके उनकी तरबियत गाहें भी हैं, उनके कैंप्स भी हैं, उन इलाकों में फौजी ऑपरेशन किया जाए और फौजी ऑपरेशन के जरिए से उन मुजरिमों को पकड़ा जाए जो पूरे मुल्क का अमन भी तबाह कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान का अमन भी तबाह कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो शाहरा है, रेशम है, इसको फौज के हवाले किया जाए, ये एक इंटरनेशनल शाहरा है जहां पर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होती है और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वाहिद और अजीम गुजरगाह यही शाहरा है, रेशम है। इस पर इस वक्त दहशतगर्दों का कब्जा है, दहशतगर्दों के कब्जे से छुड़ाने के लिए पुलिस फोर्स काफी नहीं है, यहां पर फोर्स डिप्लॉय करने की जरूरत है, आर्मी जाए उस इलाके में ऑपरेशन करे, तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार करे और इस सरजमीन को महफूज बनाए, इस सड़क को महफूज बनाए।
ठीक,
इसी तरह से ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो जाहिर है गरीब लोग हैं, कोई बहुत अमीर इलाका नहीं है। अब उनके लिए यहाँ से जो फ्लाइट रखी गई है उनकी तादाद 2 है, बालोका एक दिन में एक फ्लाइट होती है और उनके किराए आसमान से बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां के लोगों का ये देरीना मुतालबा है कि फ्लाइट की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि लोग जमीनी सफर करने पर मजबूर न हों और दहशतगर्दों के हत्ते न चढ़े। गवर्नमेंट ने खसूसी तौर पर वजीर दाखिला ने बारहा वादे किए लेकिन इन वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ,
नहीं किया।
लिहाजा इन चीजों को सामने रखते हुए जो कि वहां के रिहायशियों के बुनियादी मुतालबात हैं, उनके दिल की आवाज है, उसको सामने रखते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान ने यह चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नमेंट को दिया है कि आप इसके मुताबिक वहां के बातियों की मुश्किल हल करें ताकि वहां पर अमन हो, वहां पर बेचैनी खत्म हो और पूरी दुनिया तक एक मुस्बत मैसेज जाए, लेकिन अब तक गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं की।
ठीक है, अच्छा, धरने के हवाले से हम बात करेंगे अब थोड़ी सी। और हमने देखा कि सोमवार के रोज़ एक और एहतजाजी रैली आपके फेस टू फेस MWM की जो एहतजाजी धरना था उसके सामने वो लोग आ गए और उन्होंने भेस बदल कर इत्तेहाद उलमा कौंसिल के रूप में वो आपके सामने आए, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, नारेबाजी भी की। आप क्या समझते हैं कि ये एक तरीका था आप लोगों को डिस्पर्स करने का, या वो रैली जो थी वाकई में वो लोग वही थे जो शो कर रहे थे, और उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक करने की कोशिश की है, आप इस बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइए हमें।
आप सही कहते हैं कि जब से ये मुजाहरा शुरू हुआ और जब से ये धरना शुरू हुआ है जो हमारे पाकिस्तान के मुख्तदिर इदारे हैं और असल हुक्मरान हैं उनकी ख्वाहिश ये रही कि परेड ग्राउंड के ऊपर पार्लियामेंट के सामने कोई धरना इस तरह करना हो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस तरह का मैसेज जाए। लिहाजा पहले उन्होंने प्रेशराइज करके इस मुजाहरे को खत्म करने की कोशिश की, धरने को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन जब उनके प्रेशर में कोई ना आया बल्कि उनके प्रेशर की वजह से मजीद लोगों के ईमान में, लोगों के जज्बों में इजाफा हुआ और लोगों ने ज्यादा कुव्वत के साथ इस धरने को कामयाब बनाया, तो फिर उन्होंने ये हथकंडा सोचा कि कल अदम जो दहशतगर्द जमात है उस दहशतगर्द ग्रुप के 100-150 दहशतगर्द लोगों को सामने लाया जाए नारों के साथ और नाजेबा गलीज दबार इस्तेमाल की जाए और तकफीरी नारे लगाए जाए ताकि ऐसी फजा वहां पर वजूद में आए जिसमें यहाँ पर ये जो पुरअमन और महजब मुसलमान धरना देकर बैठे हुए हैं वो उनकी उन जज्बाती और गलीज नारों को बर्दाश्त न करें, उठे उनसे लड़े ताकि एक ऐसी फजा कायम हो जिसमें उनको इस पुरअमन और महजब धरने को खराब करने का मौका मैसर हो सके।
एक और हम एक और चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करूं कि ये जो इत्तेजाजी रैली आई थी इसमें वो हमने देखे कि बैनर्स में वो सुन्नियों का कर रहे थे कि हम गिलगित की सुन्नियों के साथ हैं, हम शियों के खिलाफ खड़े हैं, तो मीडिया में हमने देखा कि वहाँ पे ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी उन्होंने कि दो सुन्नी शिया रैलीज जो हैं एक दूसरे के सामने आ गई हैं, तसादम की सूरत हाल है। आप इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये एक साजिश ये भी हो सकती है कि वो सुन्नी शिया इसको रिफ्ट बना के पेश करना चाहते थे।
देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये उन इदारों की और उन एजेंसियों की साजिश थी और उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको फिरतवाराना रंग दिया जाए। ये बहरहाल एक नजिस और नापाक फिक्र थी जिसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। और आपकी ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में चूंकि मीडिया में भी ऐसे अनासर मौजूद हैं, उन्होंने बहरहाल इसको गलत रंग देने की कोशिश की, इसको शिया सुन्नी लड़ाई बनाने की कोशिश की, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी, ये शिया सुन्नी लड़ाई नहीं थी, बल्कि 4-5 शतगर्द अगर आपके घर पे हमला आवर हो तो जाहिर है आपको उनसे अपने आप को बचाना आपका फरीजा बनता है। तो कल इस मौजूद धरने को डिस्टर्ब करने के लिए ये कोशिश की गई और मीडिया को भी इसी काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और मीडिया को चूंकि चटपटी खबरों की आदत है और इन इदारों का वहां पर अपना असर भी है, इसलिए उन इदारों के असर की वजह से उन्होंने उस तरह की ब्रेकिंग न्यूज चला दी जिससे मजीद माशरे के अंदर एक ऐसी फजा कायम हो जिससे फिरकावादियत और फिरकावाराना रंग जो है वो मजबूत से मजबूतर होता जाए। लेकिन हमें चूंकि इस बात का इल्म था कि ये साजिश हो रही है, ये कोशिश हो रही है, लिहाजा खुदा के फजल करम से ये कोशिश हमने नाकाम बना दी और किसी तरह की कोई लड़ाई, किसी तरह की कोई जंग, किसी तरह का कोई इख्तलाफ वहां पर पैदा नहीं हुआ। और बहरहाल वो दहशतगर्द अपनी बदजबानियों के बाद वहां से चले गए और यहाँ पर जो स्टेन में मौजूद जो जिन लोगों ने यहाँ पर धरना दिया हुआ था, धरना देने वाले लोग, वो पुरअमन तौर पर रहे और उन्होंने अपना सिलसिला आगे बढ़ाया जो अब तक आगे चल रहा है। और हमें इस बात का भी यकीन है कि इसके बाद भी ये इदारे, ये एजेंसियां ये कोशिश करती रहेंगी कि इस तरह से इस धरने को डिस्टर्ब किया जाता रहे। लेकिन मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो नाकाम होंगे, इसलिए कि इस धरने में जो लोग शरीक हैं उनके रगों में शहादा का खून, शहादा का पैगाम दौड़ता है। ये इंशाल्लाह ताला किसी तरह की किसी साजिश में नहीं आएंगे और इंशाल्लाह ताला अपने तमाम मुसलमान भाइयों के साथ मिलके उन दहशतगर्दों के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। आज सूरत हाल ये थी कि मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों के अकाबिर और नुमाइंदे यहाँ पर आए, उन्होंने इस धरने से इजहार यकजहती किया और उनके अपने मसलक का शिया मतलब से ताल्लुक नहीं था लेकिन उसके बावजूद वो आए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये कोई मसलकी मसला नहीं है, फिरकवाराना मसला नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी मसला है और उस इंसानी मसले में जो जो लोग आए उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर साथ दिया। इंसानी हकूक का जो हकूक की जो कमीशन हमारी कौमी असम्बली की तरफ से बनी हुई है उसके अराकीन और पार्लियामेंट के अराकीन यहाँ पर आए, पीपल्स पार्टी के अराकीन यहाँ पर आए, जमीयत उलमाए इस्लाम के बाद रहनुमा यहाँ पर आए, एमक्यूएम के रहनुमा यहाँ पर आए, एएमपी के रहनुमा यहाँ पर आए। इस तरह से मुख्तलिफ जमातों के ऐसे अकाबिर ने आके, पार्लियामेंटेरियंस ने आके इस पुरअमन और महजब धरने से इजहार यकजहती भी किया, इनकी हिमायत का ऐलान भी किया और ये ऐलान भी किया कि वो मुक्तदिर हलकों के दरमियान और एवान हाय बाला और जेरी दोनों में इन मजलूमों की आवाज उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, एक और बात आप, मैं दो चीज़ें आपसे पूछूंगा। एक तो मीडिया का किरदार वो नहीं रहा जो कि होना चाहिए था, और ये जो मुजाहरे हुए हैं इनकी तशहीर के लिए उन्होंने वो इकदामात नहीं किए जो करने चाहिए थे। आप मीडिया के किरदार पर, और एक और जो हमारा इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो अदलिया है, आप इन दोनों के बारे में क्या कहते हैं?
देखिए, जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया को चटपटी खबरें चाहिए, वो हासिल कर लेते हैं, इसलिए एक चूहा एक बिल्ली कहीं पर से गिर जाए तो इनके कैमरे वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां पर इंसानी मसला होता है और फिर एजेंसियों की मर्जी नहीं होती, वहां पर फिर इनके कैमरे भी नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंचते भी हैं तो नशर नहीं कर पाते। यहां पर कैमरे तो सारे आए, लेकिन बाद कैमरों ने अपने स्टूडियो का रुख किया और बाद कैमरों को रोक दिया गया एजेंसियों की तरफ से, लिहाजा उस तरह की कवरेज जिस तरह की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इंशाल्लाह ताला वो दिन आएगा जब मीडिया को भी अपना तिबला सीधा करना पड़ेगा। जहां तक अदलिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान में कोई अदलिया आजाद नहीं है। कुछ जज जरूर आजाद हुए हैं, लेकिन जजों की आजादी को अदलिया की आजादी करार नहीं दिया जा सकता। इन जजों ने हमेशा मुल्क दुश्मन फैसले किए हैं, इन जजों ने कभी भी अवाम दोस्त फैसले नहीं किए, मकबूल फैसले नहीं किए। इन जजों को वहीदा शाह का एक थप्पड़ याद आ जाता है और उस पर जो है आसमान सर पर ये उठा लेते हैं, लेकिन ये जो सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया जाता है और पाकिस्तान की जमीन के चप्पे चप्पे को इन मजलूमों के खून से रंगीन कर दिया जाता है, ये रंगीनी, ये खून, ये जुल्म, ये बर्बरियत इनको नजर नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जब कोई केस भी बनता है तो फरीक जब अदालत जाना चाहे तो उसको वकील की जरूरत नहीं पड़ती, वो जज को खरीद लेता है और उसके नतीजे में इंसाफ उसके दरवाजे पे खुद बहुत पहुंच जाती है। जिस मुल्क में इंसाफ का यूं जनाजा उठ रहा हो, जिस मुल्क के अंदर इंसाफ को दफन कर दिया गया हो और इंसाफ के नाम पर बदतरीन मजालिम का मुजाहरा किया जा रहा हो, वहां पर हमें अदलिया से कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान में बसने के लिहाज से और पाकिस्तान का को हमारा वतन होने के लिहाज से, पाकिस्तान के हम अपने वतन में अपनी अपने शहरी हुकूक मांगने का हक रखते हैं, लिहाजा हमें अब भी ये तो है और अब भी हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया होश के नाखून ले, आंखें खोले, जहां जहां जुल्म होता है उस जुल्म को देखे और जहां पर जुल्म को रोकना चाहिए वहां पर जुल्म को रोके। लेकिन हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है इस मौजूद अदलिया से, लेकिन उसके बावजूद हम इत्माम हुज्जत करते रहे और अब भी इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे, अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे ताकि कोई भी ये न कह सके कि हमारी आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी या हमारे कान बहरे थे, हमें नहीं पता चला कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जुल्म हुआ है। अब हम इसी हवाले से इंशाल्लाह ताला तैयारी कर रहे हैं और अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में हम रिट दायर कर रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, शिया कुशी के हवाले से। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अवाम में इसको पजीराई हासिल होगी और मीडिया में भी ये बातें आएंगी तो लोगों को पता चलेगा कि ये जो अदालत के अंदर बैठे हुए दो रुखे जज हैं इनका असल रूप क्या है, ये इंशाल्लाह ताला अनकरीब पता चल जाएगा।
ठीक है, एक इसी तरह की रिट जो है वो पहले रिजेक्ट भी हो चुकी है। चलें, अभी आप कैंप में मौजूद थे, वहाँ पर मोमिनीन मौजूद हैं, आप थोड़ा सा बताएं कि क्या माहौल है, फ़ज़ा कैसी है, मोमिनीन के जज्बों के बारे में आप बताएं थोड़ा सा।
देखिए, जहाँ तक कैंप में मौजूद मोमिनीन और जवानों का ताल्लुक है, ये इंतहाई पुरअज़्म जवान है, ये रात दिन यहाँ पर रहते हैं, मुख्तलिफ लोग दिन में आते हैं, इनका साथ देते हैं, इनके साथ बैठते हैं, इनके गम और दुख में शरीक होने का ऐलान करते हैं। यहाँ पर दुआ की महफिलें सजती हैं, दुआ कुमेल की, दुआ तवसुल की, हदीस किसा की और नूरानी महफिल होती है, यहाँ पर मजलिसें होती हैं, यहाँ पर खुदा के फजल करम से मुख्तलिफ उलमाए कराम, मुख्तलिफ अहले दानिश मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, इनसे इजहार यकजहती करते हैं और उनकी गुफ्तगू के दरमियान यहाँ पर दुरूद शरीफ के विर्द होते रहते हैं और लब्बैक या हुसैन और नारे हैदरी के बुलंद और आसमान शगाफ नारे बुलंद होते रहते हैं और पूरे पार्लियामेंट और इर्द गिर्द के इलाकों में ये नारे गूंजते रहते हैं। रात हो या दिन हो, यहाँ पर समा एक ऐसा समा है जहाँ पर चेहरों पर जो है तमाजत है, चेहरों पर नूरानियत है, चेहरों में अज़्म नजर आता है, जवान जो है पुरअज़्म है, कोई थकन उनके चेहरों पर नजर नहीं आती। कल रात को बारिश थी, बारिश के बावजूद भी सारे जवान मैदान में खड़े थे, उन्हें कोई बारिश का खौफ नहीं था, मौसम की खराबी का कोई खौफ नहीं था। इस तरह की कैफियत में उन्हें खाने की फिक्र नहीं है, सोने की फिक्र नहीं है, जमीन के सख्त होने की फिक्र नहीं है। इसी अंदाज में सैकड़ों जवान, बल्कि बाद औकात हजारों तक पहुंच जाते हैं ये जवान वहां पर इकट्ठे होके अपनी वलवला अंगेजियों के जरिए से पूरी कौम को ये हौसला दे रहे हैं कि हम आपके हुकूक के दिफा के लिए पार्लियामेंट के सामने, उस ऐवान के सामने जहां पर कानून बनता है, जो पाकिस्तान का सबसे ऊंचा ऐवान कहलाता है, उसके सामने इंसाफ की, इंसाफ तलब करने के लिए खड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर यही अजम रहा तो इंशाल्लाह इस अजम के नतीजे में हुक्मरान घुटने टेक देंगे और इंशाल्लाह ताला कामयाबी इन धरना देने वालों के कदम चूमेगी।
ये धरना देने वाले जो हैं ज्यादा मकामी होंगे, बाहर से आने वालों की तादाद कितनी है, आप थोड़ा सा बता दें।
देखिए अभी ये एक अलामती धरना है और इस अलामती धरने में पिंडी इस्लामाबाद से बाहर किसी को भी नहीं कहा गया, वरना कराची, क्वेटा, सिंध के अंदरून के इलाके, पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और कश्मीर, इन तमाम इलाकों से लोगों ने रबते किए और कहा कि आप हमें बुलाएं, हम आएंगे। लेकिन चूंकि ये एक अलामती धरना था इसलिए इसको महदूद रखा गया है पिंडी इस्लामाबाद में, और पिंडी इस्लामाबाद में भी आम आवाम से नहीं कहा गया कि आप लोग आए, बल्कि जवानों से कहा गया कि हर हर रोज यहाँ पर 1,000, 1,200, 1,500 तक जवान मौजूद होने चाहिए, उससे ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे। लिहाजा इतनी ही तादाद में जवान आते हैं, यहाँ पर रहते हैं और अगर कोई थक जाए तो उसकी जगह नए जवान आते हैं। इस वक्त ये जो धरना जारी है ये अवामी नुमाइंदगी है, नुमाइंदगी लेकिन अवामी इज्तमा नहीं है। हमने इसलिए आवाम की उस ख्वाहिश को सामने रखते हुए ऐलान किया कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जहां जहां जुमे की नमाजें होती हैं वहां पर आने वाले इस जुमे में जुमे की नमाज तातील की जाए और सारे लोग आकर परेड ग्राउंड में इंशाल्लाह ताला जुमे की नमाज पढ़ें। इसको तमाम कौम ने एक्सेप्ट किया, वेलकम कहा और उसकी तैयारियां इस पर जारी हैं और इंशाल्लाह ताला जुमे के दिन इंशाल्लाह ताला ईमान अफरोज यहाँ पर इज्तमा मुनक़िद होगा, नमाज जुमा भी होगी और इंशाल्लाह ताला मुतालबात भी पेश किए जाएंगे। उस वक्त तक अगर गवर्नमेंट से कोई गुफ्तगु नतीजे तक नहीं पहुंचती तो फिर इंशाल्लाह ताला अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। किसी नतीजे तक पहुंचती है और मुतालबात मंजूर हो जाते हैं और किसी मंतिकी नतीजे तक हम पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर उसकी रोशनी में भी अगला ऐलान उसी जुमे की नमाज के बाद उस इज्तमा में इंशाल्लाह ताला पूरी कौम के सामने किया जाएगा। अलबत्ता उससे पहले जुमेरात के दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद की खवातीन का एक जुलूस यहाँ निकलने वाला है, रैली है और उस रैली में इंशाल्लाह ताला इस इलाके की खवातीन बच्चों समेत इंशाल्लाह ताला शरीक होंगी और इन मजलूम शुहदा के खून से इंशाल्लाह ताला अहद करेंगी। और
आखिर में मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देते हैं, खासतौर पर शिया मुसलमानों को जो पूरी दुनिया में आबाद हैं, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं, पाकिस्तान में बसने वाले जितने मोमिनीन हैं उनके लिए क्या पैगाम है, आपसे मेरा सवाल ये है।
देखिए हमारा पैगाम वहदत का पैगाम है, यूनिटी का पैगाम है। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान और खुसूसन शिया जहां कहीं पर भी बसते हों, आपस के चाहे कैसे भी इख्तलाफात हों, उन तमाम इख्तलाफात को इस वक्त भुलाकर अपने कौमी काज के लिए, अपनी हमीयत के ऐलान के लिए और अपने करबला के फर्जंद होने के नाते अपने उस अहद को पूरा करने के लिए आपस के तमाम तर इख्तलाफात को भुला के एक हो जाएं, अपने मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में मुत्तहिद हों और अपनी कुव्वत से, अपने इत्तेहाद से, अपनी यकजहती से इस आने वाले तूफान का मुकाबला करें। अगर ऐसा हो जाए कि पूरी शिया कौम मुत्तहिद हो जाए तो उसके बाद हमें यकीन है कि चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी कुव्वत भी आए इस शिया कौम को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकती, इसलिए कि शिया कौम जब मुत्तहिद होती है तो फिर हर बड़े से बड़े दुश्मन पर इंशाल्लाह ताला गालिब रहती है, आज तक भी गालिब रही है और इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी गालिब रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अलामा अमीन शहीदी, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान से डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए हिदायतनामा।